लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा है जो दोपहर तक क्रमशः बढ़ता जाता है, किंतु विधर्मियों का मार्ग अंधकारमय है। उसे पता नहीं कि वे किस चीज से ठोकर खाएंगे। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजो कर रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के चौथे अध्याय के 18 से लेकर 23 तक के पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, धर्मियों का मार्ग प्रभात के प्रकाश जैसा है जो दोपहर तक क्रमशः बढ़ता जाता है। कहता है कि दुष्ट लोगों का मार्ग सुखद प्रतीत हो सकता है और किसी छोर को पार करने का निकटतम मार्ग भी लग सकता है, परंतु यह बुराई की ओर ले जाता है जिसका अंत बुरा होता है। इसलिए यदि व्यक्ति ईश्वर और अपनी आत्मा से प्रेम करता है तो उसे दुष्ट से दूर रहना होगा। इसके विपरीत धर्मी का मार्ग उजियाला है। धर्म परायण लोगों का मार्ग प्रकाश का मार्ग है, यीशु मसीह का मार्ग है। यीशु मसीह ही उनका प्रकाश है। उन्हीं का अनुसरण कर मनुष्य प्रकाशमान हो और अपनी ज्योति को जन जन में फैलाए। जो लोग अधर्म में लगे रहते हैं वे भले ही सोच लें कि वे जो कुछ कर रहे हैं वही उन्हें सफलता दिला सकता है, किंतु मन की शांति वे कभी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनके मन में यह डर निरंतर बसा रहेगा कि कब वे किस चीज से ठोकर खा जाएंगे। अस्तु, सूक्ति ग्रंथ का लेखक चौथे अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के पदों में हृदय की रक्षा का आग्रह करता है, क्योंकि हृदय ही जीवन का स्रोत है। इस तथ्य की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि 20 से लेकर 27 तक के पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक 11 बार शरीर के विभिन्न अंगों की चर्चा करता है, कान, आंख, पलक, होंठ, पांव आदि, और फिर हृदय जिसे वह जीवन का स्रोत बताता है। सूक्ति ग्रंथ का यह खंड शक्तिशाली ढंग से इस तथ्य की प्रकाशना करता है कि किस तरह मनुष्य अपने शरीर के प्रत्येक अंग को भले कर्मों के प्रति और ईश्वर की महिमा के प्रति समर्पित रख सकता है। इन पदों का सार यही है कि हम एक ऐसे हृदय को पोषित करें जो प्रज्ञा से प्रेम करता हो तथा बुद्धि और विवेक के साथ जीवन यापन की प्रेरणा देता हो। यदि प्रज्ञा को केवल नियमों और धमकियों की प्रणाली मान लिया जाए तो उसका उद्देश्य कभी भी हासिल नहीं हो सकेगा। हमें हृदय के अंतर में प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हम शुद्ध हृदय से सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर को धन्य मना सकेंगे तथा जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ का रचयिता हृदय को पूरी लगन के साथ संजो कर रखने का परामर्श देता है। चूंकि प्रज्ञा, विवेक और मनुष्य की बुद्धि हृदय के अंतर में, हृदय के बीच में होती है, हृदय की रखवाली करना जरूरी है। बुद्धिमान राजा सुलेमान का कहना था कि हृदय को प्रज्ञा का घर, प्रज्ञा का केंद्र और प्रज्ञा का गढ़ माना जाए। हृदय ही वह बीज है जहां से जीवन प्रस्फुटित होता है, विशेष रूप से संहिता के परिप्रेक्ष्य में, जो एजिकेल के ग्रंथ के 36वें अध्याय के 26वें पद के अनुसार एक नया हृदय प्रदान करने की प्रतिज्ञा करती है। प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय प्रदान करूंगा। श्रोताओ, हृदय एक जलाशय के सदृश है और परिवर्तन वहीं से शुरू होना चाहिए। यदि जलाशय ही प्रदूषित हो तो उसके पाइप और वॉल्व को ठीक करने का कोई लाभ नहीं। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल हमें कपटपूर्ण हृदय के प्रति सचेत करता है, यह हमें कठोर दिल के प्रति सावधान करता है। घमंडी हृदय, दरिद्रों का शोषण करने वाले अधर्मी और अविश्वासी हृदय के विरुद्ध चेतावनी देता है। इन सब बातों का सार यही कि हमारा हृदय शुद्ध और हमारा मन सुदृढ़ होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल सा काम प्रतीत हो सकता है, इसलिए कि ऐसे कई मौके आएंगे जब हम प्रलोभन में पड़कर दुष्ट के रास्ते को चुन लेंगे। प्रज्ञा का पथ त्याग कर हम उन बातों के पीछे दौड़ने लगेंगे जो ऊपरी स्थल पर सुंदर दिखाई देती हैं, किंतु अंदर से खोखली होती हैं। श्रोताओ, दुष्ट व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चालाक शख्स होते हैं, जो अनवरत हमें प्रलोभन में डालने की ताक में रहते हैं। उन्हीं की तरह हमें भी अपनी बुद्धि और विवेक का सदुपयोग कर भले कार्यों और सीधे रास्तों का चयन करना चाहिए, भले इसके लिए हमें कठिनाइयों का सामना ही क्यों न करना पड़े। बाइबल आचार्य ब्रिजिस कहते हैं, जैसे शैतान विशेष पहरा देता है, वैसे ही हमें भी विशेष पहरेदारी करनी चाहिए। यदि गढ़ पर चढ़ाई होती है तो पूरे शहर को आत्मसमर्पण करना होगा। यदि हृदय पर कब्जा कर लिया जाता है तो संपूर्ण मनुष्य, यानी कि उसके स्नेह, उसकी इच्छाओं, उसके उद्देश्यों और उसकी खोज, सब कुछ को दुष्ट के पथ पर आत्मसमर्पण करना होगा। आगे चौथे अध्याय के 24 से लेकर 27 तक के पदों में लेखक हर स्थिति और हर अवस्था में सत्य पर अडिग रहने का आह्वान करता है। अपने मुख को असत्य न बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे, जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों, तुम न बाएं भटको और न दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। श्रोताओ, न्याय के पथ पर चलने के लिए व्यक्ति को यह ध्यान देना चाहिए कि उसके मुख से कौन से शब्द बाहर निकलते हैं, क्योंकि धोखेबाज, कपटपूर्ण और विकृत शब्दों का उपयोग धोखेबाज और विकृत कार्यों को छिपाने के लिए और दुष्टों के रास्ते में आगे चलने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत सच बोलने वाला व्यक्ति, धर्म परायण और न्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखता है। वह टेढ़े-मेढ़े शब्दों और कुटिल भाषण से परहेज करता है, क्योंकि उसके मुख से निकलने वाले शब्द शुद्ध हृदय से प्रस्फुटित होते हैं। उथली और सतही आदतें मन पर प्रतिक्रिया करती हैं। इसीलिए प्रायः सन की बकबक, फैशनेबल बड़बड़ाहट, चंचलता, अर्ध सत्य विचारों में पहला स्थान पा लेते हैं। सावधान रहा जाए कि हम न्याय के पथ से कभी न भटकें। प्रभु येसु ख्रीस्त ने भी यही कहा है। संत लुकस रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय के 62वें पद में येसु के शब्द इस प्रकार हैं। हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है वह ईश राज्य के योग्य नहीं। श्रोताओ, प्रज्ञा और ज्ञान के मार्ग से हम विचलित नहीं होवे। हमने सत्य का रास्ता चुना है तो हम सत्य पर ही चलें, इसी रास्ते पर अडिग रहें।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संत पापा फ्रांसिस ने संकेत दिया है कि वे कनाडा की यात्रा करना चाहते हैं। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि कनाडा के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने संत पापा को कनाडा की प्रेरितिक यात्रा, साथ ही साथ आदिवासी लोगों से मेल मिलाप की लंबे समय से चली आ रही प्रेरितिक प्रक्रिया के संदर्भ में निमंत्रण दिया है। कहा गया है कि धर्माध्यक्षों ने संत पापा को चंगाई एवं मेल मिलाप के तीर्थयात्री के रूप में कनाडा की यात्रा करने का निमंत्रण दिया है। संत पापा ने कनाडा के आवासीय स्कूल की घटना पर दुख व्यक्त किया था और उनकी चंगाई हेतु प्रार्थना की थी। पोप फ्रांसिस ने पिछली गर्मियों में कलीसिया द्वारा संचालित कमलुप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल के मैदान में पाई गई सैकड़ों अचिन्हित कब्रों की खोज की चौंकाने वाली खबर के लिए अपना दुख व्यक्त किया था। 6 जून 2021 को देवदूत प्रार्थना के दौरान उन्होंने कहा था कि वे कनाडा की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तथा कनाडा के राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से अपील की थी कि वे इस मामले को ध्यान दें और मेल मिलाप एवं चंगाई के रास्ते के लिए प्रतिबद्ध हों। आवासीय स्कूल सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूल थे, जिनमें से कई ख्रिस्तीय संगठनों द्वारा संचालित थे, जो आदिवासी लोगों को यूरो कनाडाई संस्कृति में आत्मसात करने के लिए स्थापित किए गए थे। उन्होंने 1880 के दशक से 20वीं सदी के अंतिम दशकों में काम किया और आदिवासी युवाओं को शिक्षित एवं परिवर्तित करने तथा उन्हें मुख्यधारा के कनाडाई समाज में शामिल करने का लक्ष्य रखा था। इस प्रणाली में उस समय बच्चों को जबरन अपने परिवार से अलग किया जाता था तथा उन्हें आदिवासी विरासत एवं संस्कृति को अपनाने अथवा अपनी भाषा बोलने से रोका जाता था। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह की अति आवश्यकता है। जबकि प्रतिदिन के विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करते हुए हम थकान महसूस करने लगते हैं, संत पापा फ्रांसिस ने इस थकान से बचने के लिए उदार बनने का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने 28 अक्टूबर के ट्वीट संदेश में लिखा, हम अक्सर न्यूनतम पूरा करते हैं जबकि येसु हमें जितना अधिक संभव हो उतना देने का निमंत्रण देते हैं। कितनी बार हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर संतुष्ट हो जाते, केवल नियमों और कुछ प्रार्थनाओं को पूरा करते हैं, जबकि ईश्वर जिन्होंने हमें जीवन दिया है हमें जीवन में उत्साही बने रहने की प्रेरणा देते हैं। सीरिया के धर्माध्यक्षों से दमिश्क में मुलाकात कर कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री ने घोषित किया है कि देश के सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद हेतु संत पापा फ्रांसिस उनके उदार कार्यों को समर्थन देंगे। सीरिया में अपनी प्रेरितिक यात्रा के प्रथम दिन ओरिएंटल कलीसिया के लिए गठित परमधम पीठ धर्मसंघ के अध्यक्ष कार्डिनल लियोनार्डो सांद्री ने प्राधिधर्माध्यक्ष यूसुफ आपसी और 100 युवाओं के साथ दिव्य उपासना का संचालन किया। धर्मसंघ के अध्यक्ष ने घोषित किया कि संत पापा फ्रांसिस सीरियाई कलीसिया को देश के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए उदार कार्यों में मदद देने हेतु $170,000 प्रदान करेंगे। घोषणा 26 अक्टूबर को सीरिया की 9 दिवसीय यात्रा के शुरू में की गई। दमिश्क में सीरिया के धर्माध्यक्षों को संबोधित करते हुए कार्डिनल सांद्री ने कहा कि फंड का वितरण विभाग के 17 सीरियाई कलीसियाई परिसीमा में किया जाएगा। उनका प्रबंधन धर्माध्यक्षों द्वारा उनके संबंधित धर्म प्रांतों और अधिवेशन में सबसे जरूरतमंद लोगों को जरूरतों के अनुसार किया जाएगा। कार्डिनल सांद्री ने कहा कि धर्मसंघ मार्च 2022 में एक विशेष सभा का आयोजन करेगा जिसमें धर्माध्यक्ष पुरोहित धर्मसंघी लोकधर्मी और स्थायी उदार संगठन वैटिकन के प्रासंगिक विभाग के प्रतिनिधि एवं ओरिएंटल कलीसिया के लिए सहायता एजेंसी के प्रतिनिधि एक साथ जमा होंगे। सम्मेलन में सीरिया के सभी परोपकारी योजनाओं एवं प्रयासों का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्डिनल सांद्री ने प्राधिधर्मदर्श धर्मदर्शों और कार्डिनल जिनारी को सीरिया के पीड़ित लोगों के प्रति उनके साहसिक समर्थन और उनकी दुर्दशा की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने हेतु उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सीरिया के लोगों और कलीसिया को पोप फ्रांसिस का सामीप्य प्रदान किया तथा शांति न्याय एवं कानून के शासन की पुनः स्थापना करने हेतु उनके आह्वान की याद दिलाई। परमधम पीठ ने कोविड 19 संकट से जूझने के लिए भी मदद पहुंचाई थी। सीरिया धर्माध्यक्ष धर्म सभा का एक अन्य आकर्षण सीरिया के विशेष राजनीतिक और कलीसिया संदर्भ में धर्म सभा प्रक्रिया थी जहां पूर्वी रीति की कलीसियाएं प्रमुख हैं। इस संबंध में कार्डिनल सांद्री ने याद किया कि सभा में कलीसिया के लिए पोप फ्रांसिस द्वारा परिकल्पित धर्म सभा पूर्वी कलीसियाओं को निमंत्रित करने वाली मौजूदा धर्म सभा संरचनाओं से परे है। उन्होंने कहा कि संत पापा चाहते हैं कि पूरी कलीसिया पौत्रात्मा से संचालित होकर आत्मपरक शुद्धिकरण एवं नवीनीकरण के रास्ते पर आगे बढ़े। सभी स्थानीय कलीसियाएं चाहे वे पूर्वी रीति हों अथवा लातिनी रीति सभी को 2023 के सिनेट के लिए अपने समुदायों को सहभागी बनाना है। कार्डिनल सांद्री ने सभा के उपरांत करीब 100 युवा कैथलिकों से मुलाकात की जो सीरिया की वर्तमान स्थिति और देश के भविष्य के साथ अपने दुख एवं चिंता साझा करते हैं। 2 घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहन दिया कि वे मानव प्रतिष्ठा पर प्रेम की क्रांति पर सिनेट प्रक्रिया में आवाजों को सुनने में मदद दें जो यीशु के सुसमाचार पर आधारित है तथा संत पापा की धर्म शिक्षा से प्रेरित है, खासकर प्रेरितिक पत्र फ्रतेली तुत्ती के द्वारा। कार्डिनल सांद्री की यात्रा 3 नवंबर तक जारी रहेगी। दमिश्क की यात्रा के बाद वे तातोस, होम्स, अलेप्पो, यबरूड और मैलेदा की भी यात्रा करेंगे। कोविड 19 महामारी के प्रभाव एवं संक्रमण को रोकने के उपायों को ध्यान में रखते हुए वैटिकन के प्रेरितिक धनमोचन विभाग ने 2020 के समान एक आज्ञाप्ति जारी की है जिसके अनुसार मृतकों के लिए धनमोचन पूरे नवम्बर माह में जारी रहेगा। प्रेरितिक धनमोचन विभाग ने आज्ञाप्ति को 28 अक्टूबर को प्रकाशित किया। आज्ञाप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय महामारी की स्थिति जारी रहने के कारण कलीसिया के कई चरवाहों के द्वारा प्राप्त आग्रह को सुनते हुए लिया गया है। अतः धनमोचन विभाग आज्ञाप्ति को पुष्ट करता एवं 2021 के पूरे नवंबर माह के लिए सभी आध्यात्मिक लाभ सुनिश्चित करता है जिसको 22 अक्टूबर 2020 को कोविड 19 के कारण प्रदान किया गया था। आज्ञाप्ति में कहा गया है कि दंडमोचन के अवसर का विस्तार कलीसिया की उदारता का नवीनीकरण है। विश्वासी काती कलीसिया के चरवाहे और उसके दृश्यमान आधा संत पापा के प्रति समर्पण और भक्ति में निश्चित रूप से अपने जीवन को सुसमाचार के अनुसार निर्देशित करने के लिए धार्मिक इरादों और आध्यात्मिक शक्ति की ओर आकर्षित होंगे। और इसी के साथ हिन्दी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।